प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
और पूरा खारा पानी भर रखा हो उसको या तो सारे न उलट दे, इतनी हिम्मत को ना अपने में, तो उसका दूसरा तरीका यह है कि उसमें मीठा पानी डालता ही रहे, वो और फ्लो होता रहेगा, वो खारा पानी निकल जाएगा, फिर एक दिन मीठा रह जाएगा। तो इस सत ज्ञान को तत्व ज्ञान को सुनता ही रहे, आपका जो खारा पानी पहले का भरा हुआ वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा और फिर कुछ समय के उपरांत वो पूर्ण रूप से एक ही ज्ञान, एक ही भगवान और एक ही उसको पाने की विधि शेष रह जाएगी। अब परमात्मा की तरफ तलाश जीवात्मा को उसी समय से है जब से ये उससे भी छुड़कर आई है। और काल ने कसम खाई है कि मैं इस जीव को सत मार्ग पर लगने नहीं दूंगा, इसको सत तक पहुंचने नहीं दूंगा, उसके लिए इसने भरसक प्रयत्न किया हुआ है, करोड़ों मार्गदर्शक छोड़ रखे हैं अपने दूत एक दूसरे के माध्यम से तैयार करवा के। कोई कहता पूर्व में परमात्मा है, कोई कहता पश्चिम में है, कोई कहता उत्तर में है, कोई कहता दक्षिण में है, कोई कहता ऊपर को है, कोई कहता दोनों के बीच में दिशा बनती है, यानी अपने अपने थ्योरी, अपने अपने सिद्धांत, अपने अपनी कथाएं, अपना अपना मेथड बनाकर और इन भोली आत्माओं का एंडोला बना रखे। अब जितने भी संतों और पंथों के दास ने इतिहास पढ़े, अपने सदग्रंथों के अतिरिक्त और उन महापुरुषों जिन्होंने परमात्मा पाया है साक्षात दर्शन हुए, उनके विचारों सिक्की अमृतवाणी के अतिरिक्त अन्य जितने भी संत पंथ और पंथ प्रवर्तक बने हैं, उनकी घुमा फिराकर एक ही थ्योरी है, एक ही सिद्धांत है सभी का, पर अपनी चतुरता थोड़ी सी अलग बना करके भोली आत्माओं को यह दिखाया है कि मैं उससे अलग ज्ञान जानता हूं। दंदन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ से ही दंदन सतगुरु पंथ एक मनमुखी संत ने चालू किया, और राधा स्वामी पंथ भी मनमुखी ही चालू है, क्योंकि इस राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है श्री शिवदयाल जी महाराज, वो कहते मेरा ये राधा स्वामी पंथ नहीं है, ये तो इस शालग्राम ने बाद में अपनी मर्जी तो चला दिया, अन्ना मानते तो मरो कुए में पड़ के। इनका एक ही सिद्धांत है, और श्री अंसादेश में कौन कौन आते हैं, श्री बालेगेश्वर जी, श्री प्रेम नाम है उनका, श्री प्रेम उर्फ बालेगेश्वर, क्यों छोटे से बालक को, और ये 7-8 वर्ष के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, किसकी, श्री हंस जी महाराज की, और बचपन से ही वो घर में गीता जी का पाठ करते थे, बच्चे बचपन से 10-5 श्लोक याद कर रखे थे गीता जी के, कुछ उपनिषदों के संस्कृत के, तो ऐसे ये प्रसिद्ध हो गए श्री बालेगेश्वर जी। नाम इनका प्रेम है, प्रेम, श्री प्रेम उर्फ बालेगेश्वर जी, और श्री सतपाल जी महाराज, ये श्री हंस जी महाराज के दोनों पुत्र हैं। श्री हंस जी महाराज ने क्या मार्गदर्शन किया है वो अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे। इनका जो पंथ है और राधा स्वामी धनधन सतगुरु पंथ है, इन्होंने ही आजकल विशेषकर एक न्यारी सी चाल चली थी, बाकी तो श्री आसाराम जी, श्री सुधांशु जी जैसे, ये तो बालक हैं, उवा भाई बांडव वैसे ही, ना इनको ए का बेरा ना बी का बेरा, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, और जो भी जिस तरह कोई प्रसन्न होता है उसको वैसा ही गाना गुना सुना के एक मनोरंजन का साधन बना रखा है, इनके पास तो बिल्कुल ही कख नहीं है, और इन दूसरों के पास इनसे भी बुरा हाल, कम से कम ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो मानते हैं, और ये राधा स्वामी दंदन सतगुरु और ये बालगेश्वर ये सतपाल जी महाराज और ये अंसा देश वाले ये तो श्री इन्होंने भगवान का नाम निशान मिटा दिया। तो इनकी क्या छुरी है सभी की कि कान बंद करो अनद सुनो और आंखें बंद करके आंख दबा कर देखो यहां प्रकाश दिखेगा। ये तो एक प्राथमिक जो है ना आपको रिहर्सल वो बताया है और आप स्वयं अभ्यास करो आंखें बंद करके घंटों देखते रहो अंदर ध्यान में प्रकाश आएगा लाइट आएगी फिर गुरु जी के दर्शन होंगे कभी कभी। तो ये जिस फोटो ना हम रोज देखें वो फोटो अंदर भी उसका प्रतिफल क्योंकि हमारे अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जिसको चित्र गुप्त बोलते हैं चित्र गुप्त एक हिडन फिल्म बन रही है अंदर और जो हम देखते हैं जिसको ज्यादा देर अभ्यास करते हैं जिसके ऊपर हम आसक्त हो जाते आप काफी देर बैठते रहोगे तो अंदर ना जाने कितने चेहरे आपके सामने चलने शुरू हो जाएंगे और जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो आपके सामने रुक जाएगा। इसको कहते हैं दर्शन हो गए लाइट आती है ज्योति दिखती है ये बच्चों के खिलौने। और ऐसे ही राधा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु पंथ ये भी केवल इतना ही मानते हैं कि अनहद सुन लो कान बंद करके आवाज सी आओगी घंटियों की फिर अलग से आओगी फिर अलग से आएंगी और फिर बादल सा गरजेगा फिर शंख बजेगा और फिर ये स्वर्ग तक की जो हो रहे हैं स्वर्ग में बाजा बज रहे हैं ये सब इसमें ये टीवी है अपना इसमें चैनल लगे हैं उन वो चैनल रिसीव करते हैं और यहाँ अंदर खुड़के दुड़के होते रहते हैं। तो इब फिल्म हम टीवी में कोई आदमी देख लें उसमें कुछ भी देख लें उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना वो उससे वहाँ हम कोई किसी ने सेब संतरे रखे देख लें टीवी में पेट नहीं भर सकता वो तो यह सामने हो हमें अब मिले खाने को तो पेट भरेगा। तो इसके अंदर ऐसा बताया तो उनका मानना है कि इस प्रकार काफी समय अभ्यास करो हठ योग करके सुबह शाम साधना करो और इसमें जो भी शरीर में आपको दिखाई दे वो प्रकाश रोशनी आपके हृदय में दिखाई देगी यही प्रभु के दर्शन है और मुक्ति है। अब परमात्मा के ये प्रथम तो ये दर्शन है ही नहीं ये लाइट परमात्मा है नहीं परमात्मा अलग है उससे निकल रही लाइट का रिफ्लेक्शन आप लोग देखते हैं शरीर में वो भगवान नहीं है। समाधि कैसे लगेगी अंदर ये मन कैसे टिकेगा जैसे हम बाहर देख रहे हैं पहले ये मन जाता है मान लीजिए आप मेले में जाते हो बाजार में जाते हो पहले कोई वस्तु देखते हो वहां कोई चीज बेच रहा है उस पर दृष्टि जाती है फिर कोई दूसरा आवाज लगाता है ले लो 5 के 8 5 के 12 5 के 12 फिर उधर ध्यान जाता है फिर कोई तीसरा आवाज लगाता है तो वहां ध्यान जाता है। हम मेले में 2 घंटे घूमे वहां 3 घंटे घूम लेते हैं और हमें ये नहीं पता कितनी देर हुई क्योंकि ये मन वहां नाना प्रकार के दृश्य देख रहा है और ये टिक नहीं रहा फिर भी ये देख रहा कभी उसको देख रहा कभी उसको देख रहा कभी उसको देख रहा वो 2 घंटे का समय 2-3 घंटे का समय ऐसे चला जाता जैसे फिल्म देखते हैं 3 घंटे का समय इतने जरा सी समय लगता है वो होले हुए खत्म होगी बस या तक और 3 घंटे चले गए होते हैं। तो उनसे इसी प्रकार जब इस मन को बाहर से हम अंदर ले जाते हैं तो इस शरीर में भी एक ऐसे ही फिल्म चलती है। अब जब ये समाधि सोकर के इसके अंदर चला जाता तो इसमें इस पूरे ब्रह्मांड का टीवी रूप में एक रिसीवर लगे हुए हैं वहां वहां ये क्या देखता है कहीं पर कोई नाच हो रहा है कितना गाने हो रहे हैं कहीं पर झरने चल रहे हैं कोई बाग बगीचे हैं उसमें धक्के खाता फिरता रहता कितना गुफा में घुस जाता ये गुफा देख रहा है कहते हैं वाह वही आनंद आ गए क्या बात की बड़ी शांति मिली हृदय को। ना तो शांति हृदय को मिलती मन ने धक्के ऊपर खावे और ने यो यहां खावे और जो सिमरन करके यहां से बेड़ा पार करवाना था भक्ति करके कमाई नाम की करनी थी वो रह जाती वो शेष रह जाती है फिर भी प्रभु के लिए किया प्रयत्न जैसा भी कोई करता है उसका भी कुछ लाभ इसको अवश्य मिलता है। ये अध्यात्म ये तत्व ज्ञान जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, इसको समझे संपूरा समझने के बाद ये मन डटेगा, तब ये स्थिर होगा और तब ही भक्ति आपकी बिल्कुल सीधी चलेगी। इसको समझने के लिए रह रहकर सत्संग सुनने होंगे आपको, या फिर ये तत्व ज्ञान युक्त पुस्तकों को रह रहकर पढ़ना होगा। फिर भी कोई शंका शेष रह जाती है तो सत्संग से निवारण होगा उसका। अब जैसे संतों ने काफी वर्षों, ऋषियों ने काफी वर्षों तक हठ योग करके आंखें बंद करके साधनाएं की है। अब कोई कहे कि इनका कोई लाभ नहीं मिलता इनको, तो ये क्यों किया इन्होंने? लाभ, जो लाभ हमें चाहिए था वो नहीं मिलता। जैसे कोई भांग बोएगा खेत में तो भांग हो जाएगी, ग्वार बोएगा ग्वार हो जाएगा, ज्वार बोएगा ज्वार हो जाएगी, बाजरा बीजेगा बाजरा ही फलेगा, और ना कुछ बीजेगा तो आग अड़ंगा जरूर होगा, उसमें कुछ ना कुछ झाड़ बोझड़े अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। जो भी हम परमात्मा का आश्रय लेकर और किसी भी मंत्र, चाहे किसी वेद का एक मंत्र जाप करना शुरू कर दो, और चाहे किसी गीता जी का, और चाहे कोई गायत्री मंत्र बना रखा चार वेदों से एक एक अक्षर ले करके, और चाहे किसी जैसे ये राधे श्याम सीताराम ये जाप करते हैं, या कोई भी जाप मत करो, आप परमात्मा के नाम पर बैठना शुरू कर दो, घंटे दो घंटे चार घंटे, यानी उस हठ योग भी कर लोगे उसका, उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। और उस बैठे रहने से तप बनता है, तप से राज्य मिलता है, नेक्स्ट जीवन में तप से राजसत्ता में हिस्सा होता है, राजसत्ता में। अब जैसे अब यहां अब अधिकारी गण जो राजा लोग दो प्रकार से बनते हैं, एक तो पुण्य के आधार से, और सिमरन नाम जो विधिवत सिमरन है, जैसे ओम नाम का जाप ही वेदों अनुसार गीता अनुसार, अन्य कोई मंत्र नहीं है, और उस अन्य मंत्रों के भी जाप से मतलब वो लाभ नहीं मिलता जो ओम नाम के जाप से। अन्य मंत्रों का जाप जो करते हैं और बैठे रहते हैं सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसको केवल उस सैक्रिफाइस का और बैठे रहने का लाभ होता है, उस अन्य मंत्र का लाभ नहीं होता। उस मंत्र की आड़ में वो बैठा रहता है कई कई घंटे, दिन में दो दो चार चार दस दस घंटे वो लगा रहता है, उससे बैठने का जो तप उसके 10-20-50 वर्ष का वो सारा समय उसका जो है गिना जाता है, उसके आधार पर अगले जीवन में उस साधक को कुछ राज्य सत्ता प्राप्त होती है। जैसे कोई छोटा मोटा अधिकारी बन गया, कोई एमएलए मंत्री बन गया, और अच्छा तप जिसने किया है वो मुख्यमंत्री बन गया, उससे भी अच्छा तप किया है तो प्रधानमंत्री बन गया। और ये भी दो तरह से होते हैं, एक तो ओम नाम का जाप और साथ में पुण्य आदि जिसने किए हैं, तो वो भी इसी प्रकार अधिकारी बनेंगे, उनको भी राजसत्ता मिलेगी, और बैठा रहने से और साथ में ओम नाम के जाप से भी कुछ स्वर्ग में शेष यहां भी उसको उस राजसत्ता, क्योंकि तप होता है तप के साथ उसका राजसत्ता, ये दोनों मिलती है। तो जिन्होंने पहले जो मंत्र जाप ओटपटांग मंत्र जाप किए और बैठ बैठ कर तप किए दान भी किए, उनको भी जो राजसत्ता मिली है वो भक्ति नहीं करते, वो भक्ति पर नहीं लग सकते, क्योंकि उनमें प्रभु की भक्ति का जो वास्तविक अंश प्रवेश नहीं हुआ, विधिवत साधना कभी शुरू नहीं की। और जिन्होंने कभी ओम नाम का भी जाप किया है वो भी अधिकारी मंत्रीगण बने हैं, वो फिर भी प्रभु की साधना पर लग जाते हैं। और पूर्ण संत नहीं मिलता तो फिर भी डड़े डोकर के 84 लाख योगियों में चले जाते हैं। तो यहां कहने का भाव यह है कि जैसे कहते हैं हम समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ होने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक ही संत के दो शिष्य थे, गुरु भाई थे, और वो नाथ परंपरा में थे। गुरु जी का शरीर अंत हो गया, दोनों ने उस आश्रम को त्याग दिया, अपनी अपनी गुरुदेव की बताई हुई साधना को दृढ़ करने के लिए, प्रफुल्लित करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए दोनों ही अलग अलग दिशा में चले गए। उनमें से एक को तत्व ज्ञान दर्शी संत कबीर परमेश्वर यानी उसके बताए अनुसार साधना कर बताने वाला संत मिल जाता है। तो उस नाथ परंपरा के सेवक ने, संत ने, साधक ने बहुत ध्यान से सत्संग सुना, तत्व ज्ञान पर विचार किया, तो उसने उस कबीर पंथ मारा कबीर साहब के यानी तत्वदर्शी संत से उपदेश ग्रहण कर लिया और निकला था प्रभु प्राप्ति के लिए, तन मन धन समर्पण कर दिया। उस संत ने कुछ वर्षों के बाद उसको देखकर योग्य उसको नाम देने का आदेश दे दिया और स्वयं शरीर त्याग गए। 12 वर्ष के बाद वो दोनों पुराने जो पहले गुरु का शिष्य था और फिर वो साहिब कबीर साहिब के अनुसार साधना करने लग गया था, वो दोनों एक दरिया पर एक समागम में एकत्रित हो गए। आपस में प्रेम पूर्वक मिले, कुशल मंगल पूछा, तो जो नाथ परंपरा का साधना ही कर रहा था, जो सिद्धि साधना के लिए उसका उद्देश्य था, उसने उस साधक से अपने गुरु भाई से जो कबीर पंथ से संबंधित हो गया था उससे पूछा कि आपने 12 वर्ष में क्या उपलब्धि की। उस कबीर पंथी कबीर साहब के अनुयायी ने कहा कि मैंने जो उपलब्धि कर ली वो शायद ही कोई कर सकेगा। तो उसने पूछा भी ऐसी कौन सी आपने उपलब्धि की, तो उसने पूरी डिटेल बताई, पूरी कहानी सुनाई कि ये सिद्धियां ये साधनाएं तो इस तरह की हैं, हमने पूर्ण संत का मार्ग मिल गया। तो वो कहने लगा नाथ परंपरा वाला कि तैं भी अच्छा बुद्धू है, ये क्या कहानी सुना रहा है, मैं दिखाता हूं मैंने क्या उपलब्धि की। वो कहने लगा भाई चल दिखा दे तू क्या उपलब्धि की। जिस दरिया के किनारे बैठे थे उस दरिया के ऊपर से वो नाथ परंपरा वाला सिद्ध जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली थी पानी के ऊपर चलने की, जैसे थल पर चलते, उस दरिया के ऊपर से ऐसे जा रहा है और ऐसे ही वापस उसके ऊपर चल के आ रहा है। अरनु चौड़ा होकर खड़ा होकर देखा, तब उस साधक जो कबीर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित हो गया था, उसने साधना अपनी बदल ली थी, ज्ञान हो गया था, उसने माथे पर हाथ मारा के नादान 12 वर्ष में और दो अन्नों की कमाई करी तूने, उसमें अन्ना बहुत बड़ा होता था। कहते हैं इस दरिया से पार एक अन्य में नौका वाला पल्ले पार ले जाता, एक अन्य में वापस ले आता, 12 वर्ष में तूने ये दो अन्य की कमाई करी और फिर बनेगा गधा। फिर उसने वो क्योंकि पुराना अच्छा प्रेम था उनका, एक दूसरे का बोल सुहाव था, मजाक कर लिया करते आपस में बैठ के, फिर वो काफी देर उसे डिस्कस किया, वाद विवाद भी किया, फिर आखिर में समर्पण कर दिया भी सत कह से आप सही कह रहे हो, तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तप से राजा बनता है अगले जन्म, इस जन्म में तप किया अगले जन्म में राजा, राजा भी मां दुखी और तीसरे जन्म में पशु जोनी में शुक्र सवान कुत्ता गधा बन जाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, शास्त्रों में लिखा कि जो तप करते हैं घोर तपेश्वरी यानी सबसे ज्यादा तप करने वाला बड़ा राजा बन जाता है और उतना घोर नरक में जाता है। तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी यानी उसने नरक भी घोर मिला, फिर ज्यादा राजा बनेगा पड़े उसका तो ज्यादा अज्ञानता वश ज्यादा पाप कमाता है धन संग्रह करने के लिए, राजवृद्धि करने के लिए। तो उस भक्त ने कहा जो पहला उसका नाथ परंपरा से लगा हुआ था, उसने कहा कि भाई मेरा कल्याण करवा दे, मुझे भी उपदेश दिला, मेरा भी कल्याण करवा दे। तब वो भक्त रोने लग गया जो कबीर पंथी हो गया था, कबीर साहब का अनुयायी हो गया था। तो वो नाथ परंपरा का साधक कहने लगा आप रो क्यों रहे हो, उस कबीर पंथ के यानी कबीर साहब के अनुयायी ने कहा क्या बताऊं भाई तेरे भाग मारे हैं, अब वो संत नहीं रहे और वो तत्वदर्शी संत थे, अन्य से लाभ होनी, तो वो विवेकी था, वो नाथ परंपरा वाले को सद्बुद्धि आई, उसने कहा कि किसी को आदेश देकर गए होंगे संत, मैं उससे उपदेश ले लूंगा। उस कबीर पंथ के अनुयायी ने कहा कि तू उससे उपदेश नहीं ले सकता जिसको वो आदेश देकर गए हैं, और ले भी लेगा तो तू चल नहीं सकता, क्योंकि गुरु के प्रति प्रभु के तुल भावना होनी चाहिए। तो नाथ परंपरा वाले ने कहा कि ऐसी कौन सी बात कही आपने, मुझे तो आत्म कल्याण चाहिए, चाहे वो किसी डले ने भी कह गए होंगे ना डले को, मैं उसको भगवान मान लूंगा, मुझे तो अपना कल्याण करवाना है। तब उस भक्त ने कहा, उस संत ने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए और तू मेरा गुरु भाई रहा है, और वो भी सीनियर था मेरे तो उस पंथ में, या जूनियर सीनियर की बीमारी इन पंथों में भी घनी खतरनाक है, और जहां पर ऊंच नीच और वेरिएशन है वहां भक्ति नाम का अंश नहीं होता। तब उस प्यारी आत्मा ने नाथ परंपरा वाले ने कहा कि आपने न्यू क्यों कर कैसे कह दिया कि मैं आपसे नाम नहीं ले सकता, आप मेरे भगवान मां आपका बालक है, हमने तो ये लीला करके यहां से पार, ये रोल है गुरु और शिष्य का, अपन कल्याण करवाना है, जब घर त्याग दिया फिर किसी मान बढ़ाई, आप मेरे भगवान में आपका बच्चा चरणों में से रख दिया, घनी देर रोया कि इस तो बढ़िया और क्या होगा, कति मेरा साथी मेरा भगवान बन गया, उपदेश ले लिया, दोनों का कल्याण हुआ। तो यहां कहने का भाव ये है कि अनजान व्यक्तियों ने कितनी भ्रमणाएं पैदा कर रखी है, कोई कहता है भगवान के दर्शन से दर्शन हो जाए तो पार हो जाए, कोई कह सिद्धि से बात बन जाती है, कोई कहता जंगल में जाने से घर त्याग देने से प्रभु प्राप्ति होती है, कई अनजान कहते हैं भाई मैं तो भक्ति पे लगूंगा ना फिर तो गुरबार त्याग कर सब चीजों तो निवृत्त होकर फिर मैं तो एक का धुन लगा दूंगा, वो ऐसे विचार उन व्यक्ति को होते जो कुछ ना करना हो जिन्होंने। परमात्मा का मार्ग है जब भी समय मिला इसमें कुछ नहीं त्यागना, त्यागनी बुराई है, और ग्रहण करना परमात्मा का नाम है। कभी भी मिल जाए घर में रहते रहते, बाल बच्चों के साथ रहते रहते, अपना काम करते करते इस आत्म कल्याण के सब्जेक्ट को और लगा लेना है, बस इतना। जो हमने व्यर्थ में समय बर्बाद कराया करते कि ताश खेल कर कि गप्पे मार के और कहीं ने उठ पटांग की बातें फिल्म सिनेमे देख करके ओके पाड़ कर बेमतलब राजनीति के जिक्र करते रहते कि तो भूता की बतलान लग जाते, उस व्यर्थ के समय को प्रभु के चरणों में लगाना है। और जो हम कितना शराब पीने में कितना कहीं पर बीड़ी सिगरेट पीने में फिल्म सिनेमा देखने में या लोग दिखावा दो दो तीन तीन मंजिली कोठी बनाने में पैसा बर्बाद किया करते थे, उस पैसे का सदुपयोग करना है, प्रभु के चरणों में दान धर्म लगाना है, और कुछ खोना है कुछ नहीं त्यागना है, त्यागनी बुराई है और ग्रहण करनी परमात्मा की सतभक्ति है, इतना हाँ काम करना है। और ये काम आप चाहे तो घर त्याग कर लो और चाहे घर रहकर कर लो, लेकिन फिर भी जो घर त्याग कर जाने वालों से घर रहकर ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति होती है। घर रहकर मतलब है घर त्याग के जैसे भक्त आश्रम में रहते हैं, ये भी घर है इनका, जो विधिवत साधना करते हैं अपना काम करें रोटी खावें सेवा करें अपनी भक्ति कर रहे, ये भी घर मतलब सन्यासी किसे कहते, कर्म सन्यासी, कर्म योगी और कर्म सन्यासी। कर्म योगी वो होता है जो काम करता करता और प्रभु का स्मरण कर रहा है। तो काम करते करते ही साधना सब संतों ने सब सदग्रंथों ने करने को संकेत किया है, आदेश दिया है। गीता जी में लिखा कि अर्जुन तो आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कि तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, और यही परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रमण कर, विशेष कसरत के साथ श्रमण करो। परमात्मा मनुष्य जीवन का एक विशेष उद्देश्य यही जान करके भक्ति बिना जीवन व्यर्थ है, इस उद्देश्य को मध्य रखते हुए एक ओम नाम का जाप कर, ये मेरा मंत्र है ब्रह्म का। उस परमात्मा के लिए उस पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो गुप्त है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा कि उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर फिर वो जैसे बताओ उस परमात्मा के विषय में, उस वो बताए वैसे कर, उनसे सुनो। कोई भगवान को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, इसका वास्तविक ज्ञान वो संत बताएगा, उनसे सुन। मैं नहीं जानता, वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है और पवित्र गीता जी को भी वो ब्रह्म ही बोल रहा है। इन अनाड़ी लोगों ने कर्म संन्यास किसे कहते हैं, कर्म संन्यास होता है जो काम छोड़ के, उस कर्म संन्यास से घर पर कर लो और कर्म संन्यास से बिल्कुल घर त्याग कर लो, ये दोनों व्यर्थ बताए। कर्म संन्यासी का अर्थ होता है कि जैसे घर पर बैठ गया ढाई घंटे चार घंटे हठ योग करके काम त्याग दिया, कहते हैं ये नहीं करना, काम त्यागना नहीं है, काम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काम से फारिग हो गए, बैठ कर भजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे नहीं कहा संत ने, लेकिन उससे अलग जो तुम हठ योग करके और साधना करते हो या घर त्याग जाते हो, जंगल में बैठ कर भजन करेंगे, तो कहते हैं किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति प्राणी निष्क्रम नहीं रहता। अगर तू हठ योग करके बैठ गया, तेरा मन कर्म कर रहा है, तेरी ज्ञान इंद्रिया तेरे से काबू से बाहर है, तो अप कर्म इंद्रियों को काम में लगा कर रख और ज्ञान इंद्रियों को वजन में, योग ऐसी बात बनेगी। तो फिर क्या बताते हैं, कर्म सन्यासी जो होता है उससे कर्म योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म सन्यासी को अपने लोग दिखावा ड्रामे का अभिमान हो बिना रह को ना, लेकिन दोनों की भक्ति विधिवत हो, साधना जिनकी ठीक है वो दोनों ही सफल है, लेकिन कर्म सन्यासी से कर्म योगी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म सन्यासी को अभिमान हुए बिना रह को ना। अब जैसे पहले चार आश्रम बनाए थे इस मानव जीवन के, चौथा आश्रम वानप्रस्थ कर देते थे 75 वर्ष के बाद और 100 वर्ष तक, यानी पहले ज्यादा लंबी आयु थी तो उसको ऐसे चार हिस्सों में बांट रखा था। तो उसमें पिछले हिस्से में लास्ट के जो समय में 20-25 वर्ष जितना शेष जीवन होता था वो वानप्रस्थ हो जाते थे। वानप्रस्थ होकर भी वो कर्म सन्यासी होते थे, वो कर्म सन्यासी। तो वहां उनकी झोंपड़ी उनके बच्चे डाल देते थे दोनों बूढ़ा बुढ़िया के, और उनका खाने पीने का प्रबंध वो कराते थे, और वो अपनी भक्ति फिर कराया करते थे वहां बैठ कर। फिर उनका काम तो कोई रहता नहीं, भजन का ही क्रियाएं जैसी उनको ज्ञान था वो किया करते थे। तो उनमें फिर आपस में ओड लग जाया करती, ओहो भाई ये तो सारी रात भजन करे था, ओहो सारी रात बैठा रहा, उसने उसके चार प्रशंसक हो जाते हैं, फिर वो फूल का डोडा बन जाता है, फिर उसका बीमार हो जाता है, दो चार सिद्धियां आ जाती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर वो तीर छोड़ना शुरू कर देते हैं, किसी ने आशीर्वाद दे दें, किसी को बद्दुआ दे दें, किसी का को सहारा दे दिया, किसी का विनाश कर दिया, अपनी उस पूंजी ने या तो वहीं झाड़ देते हैं और प्रभुता उनको बन जाती है, इस प्रकार वो विनाश को प्राप्त होती है। तो इसलिए कहा कि कर्म सन्यासी से कर्म योगी ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उसके बाद ये वानप्रस्थ व्यवस्था भी बंद होगी, और फिर अपना बुद्ध क्या करते थे, वृद्ध अवस्था में भी अपना खेतों में पाली जाते थे, कोई पशुओं के साथ चला जाता था या कोई घर पे बच्चा ने खिलाता खिलाता अपना भजन करता रहता था। तो ये कर्म योगी ही ज्यादा उनको पसंद हुआ, यानी उसमें ज्यादा लाभ हुआ, उनको अहम नहीं होता। फिर अभी नादान संतों ने हठ योग कर करके आम साधक की दृष्टि में तो ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े महापुरुष है, भाई देखो ये तो काफी दिनों से बैठे हैं, कहीं तो आंख भी ना खोलते हो, ये तो भाई 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, भाई क्या बात कहने, दुनिया देखने से जाने लग गई, महिमा होगी, फिर वहां उसका आश्रम बनाने लग गए और बस ठाट हो गए। परमात्मा कहते हैं ये बीमारी हमारे सतलोक में लगी थी। अब वो व्यक्ति साधना कर रहा है, हम उसको देखने जाते हैं, फिर वो साधना करके चला जाता है, वहां एक आश्रम एक मड़ी बना देते हैं उसकी, वहां सब को दबा करके फिर उसको दर्शनार्थ अपना कल्याण समझते हैं, उसके दर्शन मात्र से कहते हैं यह बीमारी काफी समय पहले से लगी हुई है अपने। अब कोई लड्डू खा रहा है, जलेबी बना रहा है और खा रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो कहे की समझदारी हुई, या तो हमें कुछ मिले, हम ऐसी कोई क्रिया करें जिससे हमें भी लड्डू जलेबी मिले तो अच्छा लगे, वो बना रहा है खा रहा है हम देख रहे हैं, ये तो बालक देखा करें। तो ऐसे हम भक्तिहीन और ज्ञानहीन बन गए इन नादान संतों की मन घड़ंत कहानी सुन सुन कर। एक भक्त ने बताया, कहा भाई जब ये दास सर्विस करता था, ऐसे जिक्र चलता था, बताता था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आवे थी, अपनी अपनी थ्योरी बतावे। एक कहने लगा, मैं इधर गया था हरिद्वार से ऊपर को, और वहां बड़े जंगलों में साधु रहते हैं, वहां बताते एक संत कपड़े भी ना पहनता वो, और केड़े की एक बांध कर रखा है। जब ये दास सर्विस करता था, ऐसे जिक्र चलता था, बताता था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आवे थी, अपनी अपनी छुरी बतावे। एक कहने लगा, मैं इधर गया था हरिद्वार से ऊपर को, और वहां बड़े जंगलों में साधु रहते हैं, वहां बताते एक संत कपड़े भी ना पहनता वो, और केड़े की एक लिया और उसकी कमर दिखी थी, फिर नहीं दिखा, जब दर्शन हो जाते थे बस भाई बेड़ा पार था। अब उन्हें कौन समझाओ, ना जानो को इतने गहर इतना गहरे उस पाश्रित हो गए। इसके विषय में आदमी गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या निर्णय देते हैं कि कभी परमात्मा का ज्ञान क्या है और नादानों की क्या छुरी का सिद्धांत है, क्या बताते हैं कि केड़े की कोपिन है। कोपिन बोलते हैं पर्दे पे एक लंगोट बांधते थे कपड़ा, उसके स्थान पर एक केड़े का पत्ता बांधे रहते हैं संत, और फूल फल पत्ते आहार करते हैं, मनुष्य के दर्शन भी नहीं करते, गांव के निकट भी नहीं जाते। लोग तो कहते हैं ये तो महान संत है, और परमात्मा के जो विधान के अनुसार ये तो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों से डर के भाग गए। क्या बताते हैं, केले की कोपिन है जो फूल फल फूल पान फल खाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य विद के जाए। कहते हैं कि केले की कोपिन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाए, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, ये निस्तिन फिरे उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। उजाड़ बोलते हैं जंगल में, ये दिन रात जंगल में धक्के खाते हैं, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। वो परमात्मा पाने का तरीका कुछ और है, क्या कहते हैं या कुछ क्या करते हैं, एक ऊंचे से स्थान को सिलेक्ट करते हैं ये साधक, उस पर बैठ जाते हैं, धुआं लगाते हैं, त्रिशूल गाड़ लेते हैं और दूर से दिखाई देते हैं कि देख भाई साधु वो तप रहा है, आम दर्शक के वो एक आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं, वहां घूम करके व्यक्ति उनके पास जाते हैं, भाई साधु तप रहा है, वो दूर ज्यादा आंखें बंद कर लेता है और फिर वहां चढ़ा अपना जो है ना भेंट पूजा चढ़ाने लग जाते हैं और दुनिया वहां एकत्रित हो जाती है। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चले, डूंगर कहते हैं ऊंचे स्थल पर, डंब डंब माने पाखंड करते हैं, ये डंब करें डूंगर चले अंतर झीनी झूल और जग जाने बंदगी करें, सो बोले सूर बबूल, दुनिया ने सोचा भक्ति करे तब कांटे हो रहे हैं अगत में। अब वो पहले तो ड्रामा कर रहा हुआ ऐसे लोग दिखावा करता, उनको तो कुछ मिलना है को ना, और ऐसे कोई जंगल में जाकर के तप भी करता है तो कहते दुनिया ने सोचा ये साधना करता है, ये तो डले ढो रहा है और अपने आने वाले जीवन में कांटे हो रहा है, क्या होगा तप से राज राज मदमानम। अब जो आज जैसे जिसके संस्कार है वो ही मिलेंगे, चाहे बुरा किया तो बुरा भोगना पड़ेगा, अच्छा किया तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अच्छे में उनको राज मिल जाएगा, राज बन करके यू इतनी कुमत को मार जाएगा कि कई हजार जन्मों तक उसने भोगना भोगे भी पूरे नहीं पटते, ये राजा को इतना पाप लग जाता है। कौन से राजा को, जो परमात्मा को पुनः नहीं स्वीकार करता, प्रभु से डरने वाला नहीं होता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता। और ऐसे भी राजाओं का प्रमाण मिला है जिन्होंने अपनी प्रजा को बच्चों की तरह पाला है, उन राजाओं को दोष नहीं लगता, क्योंकि वो निर्दोष को सजा नहीं देते। उनका स्वार्थ अपना धन एकत्रित करना या दुनिया को लूटना नहीं होता, तो वो भक्ति करते हुए इस राज्य के से होने वाले पाप से भी बच सकते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा,
मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत संसारी दी गल नो चीन न बूझ सबद जोगेरे नो, संसारी दी न बूझ सबद जोगेरे नो, मुर्दा से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नो, मुर्दा से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत लम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मुर्दों से ती ऊंची थलियां खेती बोवे न जाने भूल रहे नजदरे नो, ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए नजदरे नो, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नो, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम, मत दे दिए बालम बरे नो, श्वेत गुमट सिर छतर विराजा देखत ना उस चेहरे नो, श्वेत छतर सिर मुकट विराजा देखत ना उस चेहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो, मत दे दिए बालम नो, मत दे दिए बालम बरे नो, मत दे दिए बालम, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नो, श्वेत छतर सिर मुकट विराजे देखत ना उस चेहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो, मत दे दिए बालम, दे दिए बालम बरे नो। सत्साई
क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, कि ये मन जो है आत्मा के साथ काल में जोड़ दिया, और आत्मा अपने अपनी कमजोरी के कारण इस ज्योति निरंजन काल के पराधीन होगी, ये इसका पति बन गया, मालिक बन गया नकली।
और ये मन एक इस आत्मा के साथ इस काल में अपना एलिमेंट छोड़ दिया, ये स्वयं ही मन रूप में आत्मा के संग रहता है। और आत्मा कहती है, हे भगवान, मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और ये मन जो है परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है, संसारी व्यक्तियों की बातों को ज्यादा महत्व देता है। जैसे हम कितने प्रमाण के साथ ये दास आपको सत्संग सुनाता है, कितने भक्तों को हुए हुए यहाँ सुख आपके सामने प्रमाण मिलते हैं, और उसके अतिरिक्त उसके बावजूद भी आप घर में जाते हो, कोई पड़ोसन आ जाती है, आपसे पूछती है कि आज द्वादशी आ गई, आपने खीर कौन बनाई? आप कहोगे हम नहीं बनाते खीर, हमने तो अपने गुरु जी से उपदेश ले लिया, हम नहीं करें इस कार्य को। तो वो फिर आप न डरावेगी, कहती है हम भी तो नाम दे रखा है ऐसे ऐसे उस संत, हम तो सब पूजा करते हैं, एक ने ना सब देवी देवता की पूजा छोड़ दी थी, उसका एक का बेटा वो मर गया, देखे नो तो बात बिगड़ जाएगी, देख लिए। अब वो बेचारी घबरा जावे अक्सर सचमुच, क्योंकि वो तो अकेली नाम लेकर जा रही है, सुयल इंजेक्शन लगाने वाली 20 आने शाम तक, ये उल्टी कहानी सुनाने वाले 20 मिलेंगे उसमें, और विशेष कर मिलेंगे, क्योंकि काल भेद जगह के दूसरे से प्रेरित करवा के। तो हमारे इतने प्रमाणों के बावजूद भी ये मन आपको डरा देगा और ये मुक्ति छुड़वा देगा, दोगले से पंत लगे रहोगे कुछ दिन, फिर वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा प्रभु का। तो यहाँ ये आत्मा रोती है, देखिए मन संसारिक लोगों की बातों को तो तुरंत मान देता है, जो संत सतमार्ग दर्शन करता है, प्रमाण देता है प्रभु की हर पॉइंट का समझाता है, उस पर यकीन को न। संसारी दी गल को चीने ना जाने सतगुरु मेरे नो, मुर्दा से थी प्रीत लगावे, संसारी की गल को चीने ना बुझे सबज जो गहरे नो, और मुर्दा से थी प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो, ये जिंदे सतगुरु से तो बात नहीं करता, और वो मरे हुए मर गए बाबा जी पूजा करते थे, पितर पूजने, वो चार ईंट लगा करके खेतों या गली या जोड़ तालाब के ऊपर उनमें प्रेम तो बना बैठा, और जिन जीवित सतगुरु के से बातें नहीं करता, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, फिर क्या बताते, ऊंची थलियां खेती वो वहां भूल गए निज डेरे को। पहले पुरुष समय में सिंचाई वर्षा से ही होती थी, या फिर वर्षा के कारण के तालाबों में तृप्त जल हो जाता था, शेष समय में उसी से होती थी, वो भी थोड़ा बहुत स्थान पर। जो ऊंचे स्थलों पर खेती की जाती थी तो वहां वर्षा एक बार हो भी गई तो वह खेती नहीं होती थी, क्योंकि ऊंचे स्थलों का पानी नीचे वाली जमीन पर समतल जमीन पर आकर के रुक जाता था, और वो फिर काफी देर तक उसमें उस नमी रहती थी, और उस डहर बोलते हैं उसको, डहर, डहर बहुत उपजाऊ जमीन और झील वाली जमीन को कहते हैं। तो परमात्मा आप पे अपनी महिमा गाते हैं कि ये नादान मन अच्छी भक्ति सच भक्ति जिसे ज्यादा लाभ होना हो उसको स्वीकार ना करके ऊंची थलियां यानी इन छोटी मोटी जो आम उपासना को स्वीकार कर लेता है, ग्रहण करता है। जैसे अब कावड़ लेने जाते हैं, बोड़ी आत्मा पैरों में छाले पड़ जाते हैं, सारा दिन पैर थक जाते हैं चल चल के, और किसी ऐसे ही ये मनमुखी साधना किसी ने बता दी, इधर देखम देखा दुनिया जाने लगी, और मन बड़ा लगाओ चास चाओ चढ़ाता उसमें, और कोई बात मना करे तो भी नहीं मानता, इतना दृढ़ होकर लगता है। फिर कोई बता देता है कि देखो वहां पहाड़ पर जैसे वैष्णो देवी की माता कोई यात्रा करने गया, हम तक गए नहीं, पर बताए कि बताते हैं कि कम से कम 30-40 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ता है, और नु पहाड़ों को ऊपर को यूं घूम घाम कर, और वहां बड़ी खुशी से जाता है। ये अमरनाथ के ऊपर जाते हैं जहां जाते समय भी आदमी की घी घी बन जाए, ऐसे कहते इतने ऊंचे पहाड़ों पर नो चढ़ना पड़ता, और नो तो हजारों फुट खाई उत्तराखंड, ये भी याद करे तो भी दल डर जाते दल कांप है, कहते वहां पहुंच जाता है वहां देखने के लिए यूमन, और कोई कह दे क्रोध से आश्रम में चलो रोहतक से, यहां ना आने दे, 36 बातें और लोगों के द्वारा ना जाने के क्यों अफवाहें फैलवा दी हैं, और वो ताकि उसका उद्देश्य ये है कि वहां वो पहुंचना था अपने भगवान के सच्चे मार्ग पे, इनको पता ना लग जाए वास्तविक ज्ञान का, ये काल का बहुत तगड़ा जाल है। ये नहीं समझ सकता हम प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश चक्रमा भी तभी कहानी क्या हो रही है इनको नहीं पता, और इनके साधक करिए उपदेशक ये क्या जाने बेचारे इस काल की जाल को, ये तो वो परम पिता आता है और फिर हमारे जैसे दास को सद्बुद्धि देता है और फिर अपने बच्चों को स्वयं ही वो समझाता है और काल को अंदर से हटा देता है। जब हम इससे जुड़ जाते हैं फिर काल निकल जाता है, तब ये बात समझ में आने लगती है, नहीं तो सारी बात उठपटांग लगती है इस परमात्मा वाले। तो क्या बताते हैं कि उनको तो स्वीकार कर लेता है, ऊंची थड़ियां खेती वो जहां दाना हो नहीं उस वहां पर तो मेहनत कर रहा है ऊंचे खेतों पर, और जो अपना डेर है जहां पर बहुत बढ़िया थोड़े ही मेहनत से और ज्यादा फल होना था उसको भूल चुका है। अर्थात इनान उपासना में ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश ये अवधूत पितर देवी देवता मंडी मसानी ये ऊंची थड़ी बताई, ये ऊंची थड़ी अर्थात कम उपजाऊ बिल्कुल नाम मात्र उपजाऊ है, और भूल रहे निज डहरे नो उस निज डहर यानी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर को अपने भगवान को भूल चुके हो, और ये संसार समझदा नहीं कहता श्याम दोपहरे ने कितना कमाल कर रखा है। गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता भगवान खुद कहता मैं काल हूं अर्जुन सबको खाने के लिए आया हूं, और भाई अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहता है प्रभु आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, और आप ही से याचना कर रहे हैं अपने मंगल की अपने जीवन रक्षा की, आप तो इनको भी खा रहे हैं, आप कुछ आपके कुछ जाड़ों में दाड़ों में लटक रहे हैं ये भगवान। तो क्या कहता है अर्जुन मैं तो सबको खाने के लिए आया हूँ, तू ना लड़ेगा तो भी खाऊंगा इनको, तो इनको तो मैंने मार ही डालना है, और हम उसको भी भगवान मानते उसको भगवान करके पूज रहे हैं, वो खुद कहता है मेरी भक्ति अच्छी नहीं है वो परमात्मा कोई और है, अगर तूने परम शांति चाहिए तो वहां जाइए उस तत्वदर्शी संत के द्वारा उस परम पिता की शरण में जा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु और ये युद्ध करने के संकट नहीं आएंगे। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना होगा और भक्ति भी करनी होगी, या तो परेशानी पर परेशानी तुझे आती ही रहेगी, स्पष्ट किया है फिर भी नौ कृष्ण जैसा भगवान ने। श्री कृष्ण जी को तो आप ज्ञान नहीं, मैं बोल क्या रहा हूं, गीता श्री कृष्ण जी ने बोला ही नहीं अभी तक, ये विद्वान पुरुष एक अक्षर ज्ञान के ज्ञाता ही ये प्रमाणित करते रहे कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण कहता मुझे नहीं मालूम मैंने उसमें क्या बोला था। महाभारत संक्षिप्त महाभारत भाग 2 में पृष्ठ नंबर 667 नए का और पुराने में 1531 पृष्ठ का ये वर्णन स्वयं अपने मुख से बोला है भगवान ने कि मुझे नहीं मालूम गीता उसमें मैंने क्या बोला था, और आपने याद क्यों ना रखा, बुद्धिहीन अर्जुन को डांट मार रहे सब कहते मुझे ज्ञान नहीं। इसी सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता को नहीं बोला, वो तो जब तक कौरवों का विनाश नहीं हो लिया महाभारत नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में काल नहीं गया, और उसके बाद जब निकल गया तो श्री कृष्ण अपनी बोली बोली ना उसको गीता का ज्ञान नहीं, एक और गीता रच दी उसका नाम लिखा के और गीता बोल दी उसने, इससे मिलती जुलती भी कोई ना हो। तो परमात्मा कहते हैं तुम काल को तो भगवान मान बैठे, ये संसार समझदा ना ही कहना श्याम दोपहरे नो जून महीने की, और ये अक्षेत्र और इसमें कोई बाहर खड़ा धूप में, और वो कहता भी आनंद आ रहे हैं बस क्या बात यार, उसने शराब पी रखी है, शराब भी आदमी कह सकता है धूप को आनंद आ रहा है चाहे वो कितना पड़ा रहे। तो इस काल के अक्षीणिक सुख को हम प्राप्त करके इस साधना से हमारे वो नशा हो रहा है, इस मोहक माया का नशा हो गया हमने, यही चीज अच्छी लग रही है, तो इसलिए परमात्मा कहते हो तुम तो जून के महीने की दोपहर के समय को शाम बता रहे हो, तुमने श्याम देख ही नहीं, ये संसार समझदा ना ही कहता श्याम दोपहरे नो। गरीब दास ये वक्त ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दुपहरे नो और श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे जिस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सुंदर उसके ऊपर सफेद मुकुट रखा कबीर परमात्मा के शरीर पर सतलोक में साकार परमात्मा है। दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे में क्या बताते हैं कि तुमने हमने यहां कितना सुख मान रखा जैसे किसी की एक टांग कट गई और उसने देख लिया कि एक की एक टांग भी कटी है और साथ में एक हाथ की भी हाथ भी कटा है तो वो अपने को इतनी राहत मानता है कि इस ये भगवान इससे तो मैं अच्छा इस बेचारे के एक हाथ भी कटा है एक टांग भी कटी है और कोई पैरों से पैरालिसिस है तो वो न सोचे किसी का दोनों हाथ भी कटे हैं वो न सोचे भगवान चोखा मेरे तो पैरों में दिक्कत है इस बेचारे के हाथ ही गई। तो हम इस तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने को सुखी मान रहे हैं या सुख नहीं है। किसी के दो बेटे थे तीन बेटे थे उनमें से एक मर गया और किसी का एक था बेचारे का वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जिसका एक मरा है वो अपने आप को नो संतुष्ट कर रहा है चोखा है भगवान मेरे तीन थे मेरा तो एक मर गया बेचारे का एक ही था इसका एक ही मर गया इससे तो मैं ही सुखी हूं। तो ऐसे हम सुख महसूस कर रहे हैं या सुख नाम की चीज नहीं। परमात्मा कहते हैं इस 21 ब्रह्मांड में हमने तो कोई सुखी देखा को ना। ब्रह्मांड 2100 आग लगी है कर्तरमबाजी सभी ठगी है इन 21 ब्रह्मांड में आग लग रही है जो काल के लोक है इनमें यह बनावटी जितने भी जीव हैं ये सब ठग रखे हैं इनको धोखा देकर काल ने यहां बैठा रखा। अब जैसे रिश्तेदार मिलता है कोर्ट में और क्या हाल है कुशल मंगल पूछते हैं हाथ पे हाथ मिलाते हैं और क्या बस मौज हो रही है मौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल कोर्ट में तो महा दुखी प्राणी जाता है या तो किसी के द्वारा सता रखा होगा या खुद किसी ने दुख दे रहा होगा तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है और वहां भी क्या कहते हैं बस मौज हो रही है ठाठ है दया है खूब मौज है। परमात्मा कहते हैं हाथ मिलावा इतने ये शब्द कह रहा है ना ये शब्द कहने को मौज है हाथ पे हाथ हटाना और जब मैं चिंतित हो जाता हूँ वकील पता नहीं आया कि नहीं आया आवाज लगने वाली है फिर गवाह पता नहीं आया कि नहीं आया ये भगवान गवाही पता ना कैसे देगा और घिघी बंदी रहे अन्य का मौज हो रही है। मेडिकल में रिश्तेदार किसी बीमार को मिलने जाते हैं और वो वहां बैठे गार्डियन उसके सहयोगियों से मिलते हैं और क्या हाल है अकबर से मौज हो रही है बालक का तकलीफ गणी से बाकी मौज से बता बाकी के मौज रहेगी एक ही बच्चा वो बीमार हो रहा है घिघी बन रही है फिर और ठीक ठाक मौज है ये परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मेडिकल मर मौज का मेल कौन सा तो हम इस अभ्यस्त हो गए मौज को हमने मौज देखी नहीं है हमने वो सुख अभी मिला नहीं है हमने वो चाख्या नहीं है अमृत जिसको सुख कह सकते हैं। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम तो पहरे इस काल के लोग में ये सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं गरीब दास ये समय जावे है रोगे इस पहरे ये मनुष्य जीवन जहां तक छूट गया और सत भक्ति करी नहीं अब नखरे करते रहे तो फिर रोया करोगे इस समय को। रात्रि के समय कुत्ते देखे ऊपर नामो कर करोते उनको याद आती है आत्मा तो वही है वो आवाज करती है जैसे बोल नहीं सकती उसको याद आता है वो सुख कहाँ गया और फिर ऊपर न होकर करो वो तो वो आत्मा रो रही है। फिर परमात्मा कहते आछे दिन पाछे गए आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए के बने समय रहते तो मानते नहीं ये सत्कर मानना पुण्यात्मा ये जीव के बस का नहीं है कि वो भक्ति कर दे ये तो परमात्मा मेर बख्शते है काल आपको दुखी करता है आपके ऊपर कष्ट आपके कर्म के देता है फिर आप उस कर्म संकट के निवारण के लिए प्रभु तलाश में जाना ही पड़ता है मजबूरी हो जाती है। और जिन पुण्यात्माओं को यहाँ आने का शुभ अवसर मिल गया उनके लिए वो दुख भी वरदान सिद्ध हो गया आपके लिए वो एक वरदान बन गया वो दुख ना होता तो आप कभी नहीं मानते नए वकील बने रहते
और ये दो दिन की कहानी कथा सुनी सुनाई अपनी दंत कथा सुन करके आप अपना जीवन पूरा फिर मर जाते, फिर कोई नहीं पूछता, बहुत दुख हो जाता। यहाँ परमात्मा कहते हैं गरीब दास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नो, इस समय को याद किया करोगे और बहुत दुख पाओगे। परमात्मा के केवल दर्शन मात्र से लाभ नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। लाभ तो संत के दर्शन होने से होते हैं, लेकिन मुक्ति जो होगी वो जैसे परमात्मा ने हमें मार्गदर्शन किया है उसका अनुसरण करने से। अब क्या कहते हैं भाई, भगवान के एक बार दर्शन करा दो, बस दर्शन करा दो, बस दर्शन हो गए तो मुक्ति हो जाए। परमात्मा के दर्शन से नहीं, भगवान के मंत्र से मुक्ति होती है, भगवान की विधि विधान से यहां से छुटकारा होगा। मुक्ति मीन ऋण मुक्त होकर हम कैद से छूट जावा, उसको मुक्ति कहते हैं। अब जैसे राजा का मंत्री के दर्शन भी कर ले वहां, और कैद में जो केतु है राजा भी घूम कर दिला जावे, तो वो क्या करेगा? वो उस राजा के दर्शन से हमारी कैद नहीं छूट जाएगी। राजा ने जो विधान बनाया था उसके अनुसार चलेंगे और उसको प्रसन्न करेंगे तो राजा प्रसन्न होकर के हमें कैद मुक्त करेगा, वो अपने विधि विधान से करेगा। तो जैसे हम यहाँ काल के जाल में फंसे हैं, तो यहाँ भगवान आए थे, कबीर परमात्मा आए थे, पूर्ण ब्रह्म, हमने उनके बहुत दर्शन किए थे, 64 राक्षस हो गए थे, उनके संग भी रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे बताया था उसका अनुसरण हम नहीं कर पाए, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाए। जैसे मोटा उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री शिव जी और पार्वती, ये दोनों पति पत्नी हैं, और भगवान शिव के दर्शन करने वाले भी ये कहते हैं कि एक बार भगवान शिव जी दर्शन दे दे, मौत हो जा, मुक्त हो जाओ। परमात्मा के दर्शन से नहीं, परमात्मा के मंत्र से मुक्ति होती है। पार्वती और भगवान शिव और माता पार्वती, इनसे ज्यादा दर्शन पत्नी के, पत्नी से अधिक पति के दर्शन कोई नहीं कर सकता, और उस पत्नी की भी मुक्ति इस भगवान के दर्शन से नहीं हुई, जैसा भगवान ने उसको मार्गदर्शन किया उसका जाप करने से पार्वती का छुटकारा हुआ। जितना हो सकता है, जितना इनके पास पावर है, क्योंकि हर एक प्रभु की शक्ति होती है, उनकी उनकी शक्ति की सीमा होती है, और जितनी वो शक्ति उस भगवान में होती है, जितनी वो राहत दे सकता है उतनी दे सकता है, उससे भी राहत प्राप्त करने के लिए उसी तरीके की आवश्यकता है जैसे पूर्ण परमात्मा से राहत प्राप्त करनी होती है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज। अब जिस भी अधिकारी या किसी मंत्री गण से या मुख्यमंत्री से, जिस भी पावर से आपने संबंध कर लिया और पक्की दोस्ती जिसने होगी, आपका उसका एक दांत काटी रोटी होगी, फिर आप उसके पास जाते हो किसी कार्य के लिए, तो उसके पावर की, उसके लेवल की जो भी राहत होगी, आपको वहीं में कुर्सी पर बैठा कर, चाहे इतना होगा और वहीं मेज पर बैठे आपका सारा काम कर देगा, और बाकी उसके बाहर खड़े खड़े लाइन में खड़े होंगे और वहां गेट पर भी नहीं जा सकते, और आपको वहां बैठा कर कुर्सी पर सारा काम कर दिया, उसने उसके विपरीत कर दिया सारा काम, यानी आपको फ्री छुट्टी दे दी, आपकी कुर्सी पर भी बैठा दिया, लेकिन वो जितनी पावर उसकी थी उतनी ही राहत दे सकता, उसके बाद वो नहीं दे सकता जिससे आपकी दोस्ती जिस अधिकारी से है। इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी और मछली का एक बहुत प्रेम होता है, और पानी ऐसे जल ऊपर से डाउनफॉल हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है और वह बहकर चल रहा, और मछली जो है नो 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 करती और ऊपर पहुंच जाती है, उस फाल के ऊपर चढ़ जाती है, झरने के भी ऊपर ऊपर पहुंच जाती है, उसको जल ने सुविधा दे रखी है कि तक उगड़े, क्योंकि वो उसकी खास सहेली है, दोस्त है।
इतना लगाओ जिस भी प्रभु से आप कर लो, और उस पानी के बहाव से गजराज एरावत हाथी, बड़े तगड़े हाथियों का भी राजा, मजबूत हाथी, वो भी उस पानी के उस दबाव से बह जाता है, उसके पैर भी नहीं टिकते और मछली उसके ऊपर चढ़ जाती है, अपोजिट बिल्कुल विपरीत दिशा। तो यहां परमात्मा कहते हैं जिस भी शक्ति से आपका संपर्क है, जितना वो लाभ दे सकता है वो भी आपको तब देगा जब आपका कति एक दिल हो जाएगा, आप अनन्य मन से उसकी उसकी उसी की भक्ति करेंगे, तब वो आपका दोस्त जितना शक्ति है आपको उतना राहत दे सकता है।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।